পারি না।
বুদ্ধি থোড়ে কাহা যাতে সেন্সে বুদ্ধি উনে কাহা যাতে হো প্রশ্ন পুছনে কে দো প্রকার হতে হ্যাঁ উনমে নেগেটিভ তরিকে সে পুছনে বালে হতে পজিটিভ তরিকে সে পুছনে বালে বো হ্যাঁ जो अपनी बात को समाधान इसलिए करते हैं कि हमें दूसरों को समझाना है। खुद हमारी बुद्धि में भी पूरी रीत से बैठा नहीं है और जब हमारी बुद्धि में ही नहीं बैठा है तो दूसरों की सेवा कैसे करेंगे इसलिए। और एक पूछने वाले ऐसे होते हैं कि बाबा ने इस मुरली में ऐसे कहा और अभी ये बात ऐसे कहते हैं माने उनकी बुद्धि में भेद पैदा हो गया।
ठीक है तो ये मुरली या भक्तमानी से कुछ ऐसा होता है वो प्रैक्टिकल में लाने में बहुत फर्क पड़ जाता है उसके लिए वो अभक्तवाणी का थोड़ा सुनिए। तो 31/70 का अभक्तवाणी उनको हेडिंग दिया था अमृतदले से परिवर्तन शक्ति का प्रयोग और बोला है सदाकाल के लिए बेहद का बैरागी बनो और बोला है आज से विश्व का शर्मा आत्मा को बस स्नेह का राज्य करो।
हाँ
आज बाप दादा वर्तमान और भविष्य दोनों काल के राज्याधिकारी अर्थात विश्व कल्याणकारी और विश्व के राज्याधिकारी दोनों ही रूप में बच्चे को देख रहे हैं। जितना जितना विश्व कल्याणकारी उतना विश्व राज्याधिकारी बनते हैं। इन दोनों अधिकारों को प्राप्त करने के लिए विशेष स्वपरिवर्तन की शक्ति चाहिए। उस दिन भी सुना था परिवर्तन शक्ति को अमृत वेले से लेकर रात तक कैसे कार्यों में लगाओ। पहला परिवर्तन आप खुलते ही मैं आत्मा शरीर नहीं मैं आत्मा तरह हूँ ये आदि समय का आदि परिवर्तन संकल्प इसी आदि संकल्प के साथ सारे दिन का दिनचर्या का आधार है। अगर आदि समय में परिवर्तन नहीं हुआ तो सारा दिन स्वराज्य या विश्व कल्याण में सफल नहीं हो सकेंगे। इसलिए स्वपरिवर्तन की शक्ति को कार्य में लाओ। जैसे सृष्टि का आदि में ब्रह्म से देवात्मा शतपथना हाजी देवात्मा शतपथनात्मा पाठ में आएगी ऐसे हर रोज अमृत वेला अधिकाल है। इसी अधिकाल में उठते ही पहला संकल्प याद में ब्राह्मण आत्मा पधारे बाप से मिलन मनाने के लिए यही समर्थ संकल्प श्रेष्ठ बोल श्रेष्ठ कर्म का आधार बन जाएगा। पहला परिवर्तन मैं आत्मा कौन इसके बाद दूसरा परिवर्तन मैं आत्मा किसका हूँ सर्व संबंध किससे है सर्व प्राप्तियां किससे है। पहले देह का परिवर्तन फिर देह के संबंध का परिवर्तन संबंध के आधार पर प्राप्तियों का परिवर्तन इसको कहा जाता है सहज याद। ये देह का परिवर्तन एक संबंध का परिवर्तन इसे सहज याद ये परिवर्तन ये थियोरी से प्रैक्टिकल में लाने में फर्क पड़ जाता है।
अरे सुनो भाई ध्यान से ये आईटी जा रहे
हैं ये थियोरी से प्रैक्टिकल में लाने में फर्क पड़ जाता है वो फर्क दूर करने के लिए ये दरखास्त है।
अब आप पूछना क्या चाहते
हैं ये थियोरी है थियोरी से प्रैक्टिकल में लाने में जो फर्क है वो फर्क हटाने के लिए होते हैं।
फर्क सुनाने से खत्म थोड़ा ही होगा फर्क को कारण देखना है कि ये फर्क क्यों पड़ रहा है वो कारण का निवारण भी हमें अभिवाणी में बता दिया है।
हाँ जी
विजय माला का आवाहन करो क्या बाप और दादा क्या बताया ये जो प्रैक्टिकल में और थ्योरी में अंतर पड़ रहा है बेसिक नॉलेज में भी अंतर पड़ा और एडवांस में भी अंतर पड़ रहा है इसका कारण क्या बताया जो निवारण के स्वरूप में बताई दिया
विजय माला का आवाहन
क्यों आवाहन करें
वो संपूर्ण है
संपन्न है उन्हें ज्ञान लेने की दरकार नहीं है,
है।
आवाहन इसलिए करो कि लंगड़ चंदों में प्योरिटी की वो जन्म जन्मांतर की पावर नहीं है
माजी
इसलिए वो सुनेंगे और सुनाएंगे ज्यादा लेकिन प्रैक्टिकल में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिकल में परिवर्तन करना
ये प्योरिटी का काम है और जन्म जन्मांतर की प्योरिटी धारण करना ये सन्यासियों ने प्योरिटी धारण की है क्या इसलिए बोला है जब बड़े बड़े नामी ग्रामी सन्यासी निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी उनमें प्योरिटी तो है लेकिन सच्चा ज्ञान नहीं है इसलिए उनका आवाहन करो बेसिक नॉलेज में जो भी सरेंडर्ड वर्ग है वो सन्यासी है या गृहस्थी है सन्यासी है उनमें से कोई कोई नामी ग्रामी सन्यासी निकलेंगे पक्के पक्के प्रवृत्ति मार्ग को मानेंगे तो लेकिन अभी निवृत्ति मार्ग को ही प्रवृत्ति मार्ग समझे बैठे इसलिए उनका आवाहन होगा वो सहयोगी बनेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी
ठीक है
कुबेर सुना है तो नाम तो सुना है उसके आधार पर उसका काम भी जानते होंगे हस्तदेव में जो कुबेर है वो कुबेर किस चीज का स्वामी है वो कौन सा धन है ज्ञान धन है और वो ज्ञान धन सिर्फ सुनने सुनाने की चीज है समझने समझाने की चीज है कि कोई और बात भी है प्रैक्टिकल में अपने जीवन में धारण भी हुआ होना चाहिए जो प्रैक्टिकल धारणा है और धारणावान है उसको सुनने सुनाने की भी दरकार नहीं और दूसरों को समझाने की भी दरकार नहीं वो अपने प्रैक्टिकल जीवन से ही दूसरों के ऊपर असर डाल देगा इसलिए कुबेर धन का स्वामी है
नंबर
अव्वल नंबर में बैठा हुआ है ईशान कर्ण में ईश्वर ईश्वर से तो बड़ा कोई होता ही नहीं उसके बाद दूसरा नंबर है कुबेर का और एक आदमी बोलो सर है वेर का इस बात का
हद किसको कहा जाता है बेहद किसको कहा
हद कहा जाता है जैसे लौकिक बाप है उसको दो चार आठ दस बीस पचास बच्चे या क्राइस्ट को 200 करोड़ बच्चे हैं वो हद में है बेहद में नहीं और परमपिता परमात्मा को 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र है वो सब उसके बच्चे हैं तो वो बेहद का बाप है हद माने थोड़ा और बेहद माना उसकी कोई सीमा न हो असीम हाँ जी कल की माने कलयुग में ही कलंक वलंक ज्यादा लगते हैं सतयुग में तो कलंक की बात ही
दोनों नाम अलग अलग होता है
नहीं नहीं वो बिगड़ा हुआ रूप है और
पिताजी में जो हड्डी विनाश होता है पिताजी कांत में तो उसका रूप प्रकृति कैसा होता है
प्रकृति का रूप कैसा होता है
हाँ।
प्रकृति का रूप सात्विक से सतो सामान्य से रजो प्रधान बन जाता है गृति कला की ओर बन जाता है
लेकिन भूकंप होता है ना
हाँ भूकंप होगा जब बैलेंस बिगड़ेगा तो भूकंप भी होगा पलड़े है तखरी के तराजू के दो पलड़े है एक पलड़ा जो है वो पुण्य कर्म से भरा हुआ है और एक कर्म पलड़ा जो है वो ऊंचा है। अगर पुण्य कर्म वाला पलड़ा हल्का हो जावे तो बराबर रहेगा और ज्यादा हल्का होगा तो वो नीचे आ जाएगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो जैसे ही बैलेंस बिगड़ता है, 16 कला से 8 कला से नीचे आता है तो भूकंप हो जाता है। जैसे तराजू के पलड़े ऊपर नीचे होते हैं ना, ऐसे ऊपर नीचे हो जाता है।
जो सर्व था, जो नजारा था, हाँ, वो कुछ ना कुछ रह जाएगा।
जब भूकंप हो जाएंगे तो भूकंपों में ज्यादातर तो हिस्सा पृथ्वी के अंदर ही चला जाएगा ना। जो महल माणिया अटारियां बने बनाए हैं प्राकृतिक रूप से गुफाओं के अंदर, वो सिर्फ महाराष्ट्र में ही देखने में आ रहे हैं या सारे भारत में देखने में आ रहे हैं? घोड़े से अजंता एलोरा एलिफोंटा की गुफाएं रह गई, वो भी थर्ड क्लास, सिर्फ निशान मात्र चित्र रह गए।
और देवी देवता जो थे, वो देवी देवता जो पिताजी का अंत में जो बचता है तो वो भी कुछ मिट्टी के अंदर चला जाता है क्या?
जो ज्यादा पावरफुल होंगे वो ही बचेंगे या सब बचेंगे? पावरफुल होंगे, जिनके पुण्य का पलड़ा ज्यादा भारी होगा वो बचेंगे।
तो उसमें जो बचता है तो उसको तो खाने के लिए कुछ नहीं रहता है?
अरे खाने पीने के लिए फल फूल और पत्तियां खत्म हो जाती है,
रहेंगे
और चिंता हो रही
है। दापत्य को पुण्य के लिए भारी विनाश होता है,
अर्ध विनाश आधा विनाश।
सत्युग से त्रेता तक वो तो अर्ध विनाश होता है,
सत्युग से त्रेता तक अर्ध विनाश नहीं होता, उसको विनाश नहीं कहेंगे।
उसमें तो आधा हो जाता है,
विनाश नहीं कहेंगे।
आधा
विनाश तब कहेंगे जब अर्ध कला से नीचे आ जाते
हैं। ठीक है,
बहुत पहले से बिगड़ता है,
अर्ध विनाश होता है। त्रेता से दापर में कितना मरता है? सुबह तो 8-10 फुट होता है।
हाँ,
कितना बचता है?
अर्ध विनाश का मतलब आधे मरे,
स्वतंत्रता में तो पाप नहीं होता
है। मतलब पूरे ही खलास हो जाता
है। स्वतंत्रता में तो इच्छा मृत्यु होता है।
हाँ,
फिर वहीं पर वो पाप नहीं होता है, फिर अर्ध विनाश मर जाएगा।
अरे कुछ ऐसे भी तो है जिन्होंने संगम युग में कम पुरुषार्थ किया है, सभी ने एक जैसा पुरुषार्थ किया है क्या? जिन्होंने कम पुरुषार्थ किया है वो त्रेता तक जन्म लेते लेते देहवान में ज्यादा आ जाते हैं।
और
दापुर से कलि में पहुंचने में कैसा विनाश होता है?
वो विनाश नहीं होता है, ऐसा तो जन्म मरण चलता ही रहता है। टोटल विनाश होता है कलयुग के अंत में, जब सब आत्माओं को वापस जाना है।
हरप्पा मंच का जो सभ्यता है, हरप्पा मंच का जो सभ्यता है, पिता का जो अंकंड बोलते 1000 वर्ष पहले हरप्पा मंच का सभ्यता था, तो वो 1000 वर्ष पहले
वो अर्ध विनाश होने के बाद
पहले
नहीं, समय कुछ बनता बनाने की दरकार नहीं होती, ऑटोमेटिक प्राकृतिक रूप से बनता है। अर्ध विनाश होने के बाद बनाया जाता है।
मिट्टी खुदने का इसको निकाला गया।
हाँ जी,
तो ये
त्रेता से दापर युग अर्ध विनाश के बाद जो बचता है उसका वो त्रेता युग का कोई कहानी याद नहीं होता है?
है ना, ये चित्र है ना गुफाओं में, लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं, शंकर के चित्र हैं, उनकी कथाएं हैं।
जो बचता है उसका वो त्रेता युग का कहानी सब याद होता है उसको?
वही तो चित्रों के रूप में चित्रित किया गया है, जो बाद में शास्त्र बनाए गए।
और बाबा पूरा किससे कहते पूर्व पराई
है?
अब पूरी में बोला है जब तक तो पूर्व पराई नहीं होगा जो खलास नहीं होगा, तो पूरा पराई किससे कहते?
पूरा पराई माने देवान बिल्कुल खलास हो जाए। जिसका जिसका देहभान खलास होता जाएगा, समझो उसकी पढ़ाई पूरी हो गई। जब तक जीना है तब तक जीना है, किसमें जीना है? देहभान में जब तक जिंदा है तब तक पढ़ाई है।
लेकिन चार जो सब्जेक्ट है ज्ञान योग धारणा सेवा, वो तो पढ़ाई में होता है, पढ़ाई में तो चार सब्जेक्ट है, तो चार सब्जेक्ट में तो पास होना है।
हाँ जी,
डायनोसर किस समय का है?
ये डायनोसोर उस समय की बात है जिस समय जानवर बुद्धि बनना शुरू होते, द्वापर युग के आज से ही डायनोसोर शुरू हो जाते। उससे पहले डायनोसोर जैसे जानवर नहीं होते थे और उनकी संख्या सीमित थी। जिस जंगल में रहे होंगे वो सारे जंगल में जब आग लगी तो सारे के सारे डायनासोर खलास हो गए, कोई एक आध बचा चौपाया, उसका संसर्ग जो है वो दूसरे प्राणियों से होने लगा,
मगरमच्छ
जैसे मगरमच्छ, और वो जाति बदल गई, वो जाति खत्म हो गई। हाँ, जहाँ कहीं भी यादगार रखी हुई है वो यादगार किसने बनाई है? बनाने वाले कौन है? अरे वो बनाने वाले यादगार कौन है? मनुष्य है कि देवता है कि भगवान है? मनुष्यों ने बनाई है, मनुष्य तो भिकारी बुद्धि है। भिकारी बुद्धि जो कुछ बनावट बनावेगा उस बनावट में और उसकी समझ में अंतर हो सकता है या नहीं हो सकता है?
होगा होगा,
अंतर हो जाता है। वो ही वैज्ञानिक कहते रहे और सबने माना डार्विन थ्योरी को कि मनुष्य पहले बंदर थे, उनको पूंछ थी, धीरे धीरे पूंछ खत्म हो गई, वो मनुष्य बन गए। बाद में वैज्ञानिकों ने इस थ्योरी को काट दिया। तो मनुष्य भूल करता है और मनुष्य भूल सुधारता है। तो लाखों वर्ष पहले की हड्डियां मिली है डायनासोर की, ये उनका कैलकुलेशन में कोई गलती है। टाइम आएगा तो अपनी गलती को सुधार लेंगे। और
तो
नंबर वार है, इनकी आत्मिक स्थिति रहती है उनमें ऊपर से आने वाली आत्माएं प्रवेश करेंगी, या जिनकी आत्मिक स्थिति पूरी नष्ट हो जाती है उनमें प्रवेश करेंगी? सभी धर्मों के बीच में ऐसा धर्म कौन सा है जो सबसे जास्ती पतित बनता है? इस्लाम धर्म। तो इस्लाम धर्म की कोई ऐसी आत्मा भी होगी जो ज्यादा पतित बने का काम करती होगी। हिंदू धर्म के वो देवताएं जो सेकंड नारायण है और उसके राज्य में आने वाले हैं, वो द्वापर युग में आते आते दृष्टि का सुख तेजी से भोगते भोगते एकदम पतित बन पड़ते हैं। उनका जो मुखिया होगा वो सबसे ज्यादा गिरा हुआ होगा कि नहीं? उसी में उसकी सोल प्रवेश कर जाती है, उसमें आत्मिक स्थिति का नाम निशान नहीं रहता। ऐसे नहीं कि सूर्यवंशियों में प्रवेश कर जाएगी, सूर्यवंशियों में तो लास्ट जन्म में जाकर के प्रवेश होते हैं, वो भी चंद्रवंशी। और डायनासोर अच्छी तरह बुद्धि में बैठा हुआ है। क्या पूछते हैं, क्या पूछते हैं डायनासोर के बारे में? डायनासोर कैसे आया? जैसे जैसे और जानवर आए वैसे डायनासोर भी आए। सतयुग त्रेता में मगरमच्छ होते थे क्या? होते थे, मगरमच्छ तो नहीं होते थे, वो कैसे आए? तो जैसे मगरमच्छ आए वैसे डायनासोर आए।
तरीके
एक
शरीर कैसे मिलेगा?
शरीर कैसे, मगरमच्छों को शरीर कैसे मिला? जैसे मगरमच्छों को शरीर मिला ऐसे डायनासोर को शरीर मिला।
माता जी पूछते हैं कि मगरमच्छ या डायनासोर का शरीर कैसे मिलता है?
और जानवरों को शरीर कैसे मिलता है? जब बता दिया डायनासोर सब खलास हो गए, एक आध कोई बचा, उसका संसर्ग दूसरे चौपाइयों से होने लगा। जैसे घोड़े का संसर्ग किसी गधे से हो जाता है, तो घोड़ा पैदा नहीं होता, खच्चर पैदा होता है।
हाँ जी,
जाति बदल जाती है। ऐसे ही उनकी प्रजाति बदल गई, बदल करके वो मगरमच्छ बन गए।
दक्षिण भारत में एक्चुअली वो जो तिरुपति बालाजी का मंदिर है ना, तिरुपति बालाजी मंदिर को नारायण है ना, तो उसके माथों पर तिलक लगा हुआ है, तो उसका मतलब क्या है?
माँ के पार्ट को तिलक लगा हुआ है।
माँ के पार्ट तिरुपति बालाजी के मंदिर में उस नारायण से जो माथे पर तिलक लगा हुआ है ना,
आत्मिक स्मृति का तिलक लगा हुआ है। उन्होंने आत्मिक स्मृति सबसे जास्ती धारण की होगी। हाँ, ऐसे इसलिए उनके माथे पर आत्मिक स्मृति का तिलक लगा हुआ है। और बोलो, ये बंगाली जानने वाले भी सुने थोड़ा।
गली गली में गीता पाठशाला।
हाँ जी, गली गली में गीता पाठशाला होना चाहिए, नहीं होगी। भारत की गली गली में गीता पाठशाला होगी, मैंने हर गली में गीता पाठशाला चाहिए। क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए कि जब विनाश होगा तो भारतवर्ष में चारों ओर मिलिट्री शासन होगा, बंदूक लेके हर गली में खड़ा हुआ होगा, बाहर नहीं निकलना। तो हर गली में गीता पाठशाला होगी, तो सामने के दरवाजे से निकले और यूं यूं झांक के देखा, हो गए। तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, बचेंगे। इसलिए गली गली में गीता पाठशाला चाहिए। ऐसे टाइम पर भी तुम्हारी रोज मुरली का सुनना मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए बोला गली गली में गीता पाठशाला चाहिए।
एक कैसेट में बोला है
मकर कहते हैं मकर को, क्या? और ताम्र कहते हैं लाल जो तांबा होता है, उसको कहते हैं ताम्र ध्वज। एक है क्रोधी की निशानी और एक है कामी की निशानी। ध्वज कहते हैं झंडे को, क्या? जिनका झंडा है कामी और क्रोधी का, महाकामी है और महाक्रोधी है, उनको कहा जाता मकर ध्वज और ताम्र ध्वज। ऐसों का भी उद्धार भगवान ने कर दिया। और
अक्टूबर महीने में विशेष करी को आकाश और तीन कलर के, बीस कलर सफेद, अक्षर हरा,
उल्टा हो गया, पिंक कलर नीचे चला गया, झंडे का लाल रंग क्या, झंडे का लाल रंग जो ऊपर होता है वो कहाँ चला गया, नीचे चला गया, और झंडे का हरा रंग नीचे होता है वो कहाँ चला गया, ऊपर। ऐसा कुछ बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसीलिए दिखाई दिया पहले से कि बैलेंस कुछ बिगड़ने वाला है, तमाशा होने वाला है, कोई हंसने वाला है, कोई रोने वाला है। और
कृष्ण
जी
पैदा होगा,
हाँ जी, 18
साल में तो संगम
युग कृष्ण
प्रत्यक्ष होगा,
हाँ जी, संगम युग 100 साल का है, संगम युग के 100 साल के अंदर जो कृष्ण प्रत्यक्ष होगा और जिसका शास्त्रों में गायन है वही संगम युग कृष्ण होगा।
कृष्ण क्यों बोलता
है, कृष्ण इसलिए कहते हैं कि वो काला पार्ट बजाता है, पहले उस काले पार्ट को कोई समझ नहीं सकता, उस काले में एवर प्योर गोरा कैसे समाया हुआ है, इसलिए कृष्ण नाम रखा है। कृष्ण का अर्थ होता है आकर्षण करने वाला, तो काला आकर्षण करता है या गोरी आत्मा आकर्षण करती है एवर प्योर, वो शिव की सोल एवर प्योर वो आकर्षण करने वाली आत्मा है, वो आकर के कृष्ण जैसे बच्चे को आप समान बनाकर जाती है। जब आप समान बन जाए तो शिव का काम कलास हो जाए।
बोली में सुना है त्रेसठ जन्म का चाका घूमता है, तो संगम युग में जब हम लोग कुछ से पावन होता है, बाबा आते हैं हम लोग को ज्ञान देते हैं, तो उस समय जो कर्मेंद्रियों से जो पाप होता है, तो पाप की याद करते हुए भी कर्मेंद्रियों से पाप होता है, तो एक ही 63 जन्म का जो चाका घूमते हैं उसके लिए होता है, हम कोशिश करते हैं फिर भी हो जाता है कुछ ना कुछ कर्मेंद्रियों से।
तो याद की जो परसेंटेज है वो 100% नहीं होती है, इसलिए पाप कर्म बन जाता है। और बाप ने तो कहा है कि पाप कर्म करने की दरकार ही क्या है, जबकि मालूम है कि ये पाप कर्म है तो न करो, फिर जानबूझ करके भी श्रीमत के खिलाफ कर्म करते हैं तो 100 गुना बोझ चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा। बाकी ये प्रैक्टिस तो मुसलमान लोग करते हैं, क्या ये आग का अलाव बनाते हैं और उस अलाव में नंगे पांव चले जाते हैं क्रॉस करने के लिए, मुसलमान धर्म के होंगे वो फिर ये प्रैक्टिस जरूर करेंगे क्या।
ये त्रिमूर्ति चित्र एक्यूरेट नहीं
है,
मैंने बोला ये त्रिमूर्ति चित्र एक्यूरेट नहीं है, इसको एक्यूरेट बनाना है, एक कब एक्यूरेट बनेगा,
एक
मूर्ति का एक्यूरेट चित्र बनाना चाहिए,
तीनों मूर्तियों का चित्र एक्यूरेट बनाना चाहिए,
बनाना चाहिए,
हाँ जी, एक मूर्ति का नहीं,
कब बनेगा,
तीनों मूर्तियों का चित्र एक्यूरेट बनाना चाहिए, वो तब ही बनेगा जब बनाने वाला एक्यूरेट होगा। अपनी चलन से, अपने चेहरे से, अपनी दृष्टि से, अपनी वृत्ति से बाप को प्रत्यक्ष करेंगे, यह जिनका चेहरा भोड़ा होगा, खुद की चलन भोड़ी होगी, वो त्रिमूर्ति बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। भोड़ा का मतलब है देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, हाँ जी, चलन भी अच्छी होनी चाहिए, दृष्टि भी अच्छी होनी चाहिए, वाइब्रेशन भी अच्छे होने चाहिए, उनकी सेवा का स्टाफ भी अच्छे से अच्छा होना चाहिए, तभी बाप को प्रत्यक्ष करेंगे।
ऐसे तो सुना जाता है कि हैदराबाद वालों ने तीन मूर्तियों का चित्र छपाई दिया, छपा तो दिया, फिर छपाने वालों में कोई विष्णु पार्टी में आना जाना करने लगा हो तो दुर्गति हुई या सदगति हुई? है दुर्गति हो गई। चित्र छपाने से अगर पाप प्रत्यक्ष हो जाए फिर तो बड़ा साधन सच्चा निकला, सहज निकल आया। फिर तो पैसे वाले जितने भी होंगे वो सब छपा देंगे।
का दो पिता था, एक जन्म देने वाला एक पालन करने वाला, तो देना कौन?
जो जन्म देने वाला है माँ बाप वो अभी भी विकारों की जेल में पड़े हुए हैं। क्या विकारों की जेल में है? उनको पता ही नहीं है कि भगवान कौन है, अभी भी अंधेरे में, अंधेरी कोठरी में पड़े हुए हैं। जो पालते हैं वो पालना ले रहे हैं भगवान बाप से।
तीन सौ 394 नंबर कैसेट में है, जो पहला जन्म में छतुर्थी का 2036 साल में पहला जन्म में 1,00,000 घुसेगा, 1,00,000 घुसेगा, 50,000 रुद्र माला का, 50,000 विजय माला का।
हाँ जी,
तो हमारा तो 9,00,000 तो तैयार हो जाएगा पहले।
9,00,000 होंगे पहले जन्म के अंत में,
संगम युग का अंत में जब विनाश का बाद 18 साल में कांचन का हो जाएगा, तो 9,00,000 तो कांचन का 4,50,000 से तो 4,50,000 कांचन का बाद क्या फायदा होगा? 9,00,000 कांचन
का जब कंचन काया हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, तो गिनती करने वाला कोई रहेगा?
नहीं नहीं, जानने के लिए पूछा,
जानने के लिए जो पूछा जा रहा है वो अंदर से समझने की बात है कि जिनको जितना पुरुषार्थ करना होगा पहले जन्म का माने 84 जन्म लेने का, वो सन 36 आने से पहले ही उनका पुरुषार्थ पूरा हो चुका होगा। अब ये बात दूसरी है कि अंत में उन्होंने अपना पुरुषार्थ पूरा किया, पहले पहले पूरा नहीं किया, इसलिए हो सकता है शरीर छोड़ना पड़े।
तो मतलब 1,00,000 तो जाएगा, तो बाकी तो 9,00,000 फिर भी बोला क्या, दो चार साल से ज्यादा से ज्यादा 2-4 साल तक और 1,00,000 तैयार हो जाएगा, 150 वर्ष का जो
आपको कोई भी हिसाब निकाला जाए 150 वर्ष के अंदर जो टोटल आबादी है वो 9,00,000 होनी है।
तो ठीक है, लेकिन और जो बाकी 2,00,000 चला गया
वो आते रहेंगे, जिनको जन्म लेना है वो भी आते रहेंगे, जिनको जन्म देना है वो भी आते हैं।
बात यही है, तो वो जो 7,00,000 रहेगा बाकी 7-8,00,000
है,
वो लोग कहाँ रहेगा?
कहाँ 7-8,00,000 रहेगा?
तो 1,00,000 तो जाएगा,
1,00,000 तो शरीर से रहेगा, जिन्होंने अपना पुरुषार्थ बहुत पक्के रूप में पहले कर लिया, सूर्यवंशी अथवा वो चंद्रवंशी जिन्होंने अपने को सूर्यवंशियों के संग के रंग में पूरा पूरा डाल दिया, सरेंडर हो गए, आधीनता स्वीकार कर ली। बाकी जो और धर्मों के हैं बीज, वो उतना ही पुरुषार्थ करेंगे जितना सूर्यवंशी करेंगे, वो तो नहीं कर पाएंगे। तो उनका जो छिलका है वो ज्यादा कड़क है, इसलिए उनको अपना शरीर छोड़ना पड़ेगा।
वो शरीर कब छोड़ेगा?
विनाश में हाँ जी, विनाश में ही शरीर छोड़ेंगे।
तो विनाश के बाद कितना जाएगा?
अभी तो बता रहे 50,00,000 और 50,00,000
50,000
50,000
1,00,000
तो रुद्रिय के जब रचते हैं तो 1,00,000 पक्के शालिग्राम बनाते हैं, इससे ज्यादा बनाने की गुंजाइश ही नहीं होती है।
बाकी सब क्या परंग में रहेगा?
रहेंगे तब तो धीरे धीरे आके रहेंगे, जन्म पूरे 84 लेंगे लेकिन वर्ष उनके कम हो जाएंगे। नंदीग्राम में क्या हो गया, क्या हो रहा है, फिर भी अखबार में आपने बता देखा हो तो बताओ। है सब काट दिए? अच्छा है माँ माता हो गई। हाँ तो महाभारत में कोई नंदीग्राम दिखाया है? है अरे गोकुल और नंदीग्राम दिखाया है या नहीं दिखाया है? हाँ तो जब कंस गुस्से में आता है और अपने सैनिकों को भेजता है तो नंदीग्राम में आग लगवाता है, मारकाट मचाता है या नहीं मचाता है? तो शूटिंग हो रही होगी, ये तो बेहद का नंदीग्राम है, वो हद का है। और निवृत्ति मार्ग उनको कहते हैं जो निवृत्ति में हो, माना पति पत्नी इकट्ठे न रहते हो, सन्यासी हो। पत्नी पति पत्नी के संबंध की उन्हें दरकार ही नहीं।
कुमार गए थे,
कुमार के अम्मा बाप मर गए क्या?
हलवा खाएगा
कैसे होगी, इसका मतलब मर गए? अरे मर गए कि जिंदा है? जिंदा है तो भाई के लिए फिर पूछ रहे किस लिए?
बाबा जब बमों का विस्फोट होगा तो जैसे कि जो पालना जो होगी दैवी की तो इसी शरीर से एक जन्म मिलेगा ना?
है
इसी शरीर से एक जन्म मिलेगा ना बाबा?
हाँ
तो वो जो पालना जो होगी तो जो बमों का विस्फोट होगा उसके बाद जो 7 दिन तक लगातार बारिश होगी तो बर्फ की बर्फ जब जमेंगे अष्टदेव छोड़ के बाकी जो बर्फ में दब जाएंगे।
अष्टदेव छोड़ के?
अष्टदेव भी बर्फ में थकेंगे।
अरे अष्टदेव को छोड़ क्यों दिया? सजा हुई, कोई सजा है? जो आत्म की स्थिति में टिक जाता है उसे शरीर का दुख फील होता है क्या? शारीरिक दुख जो है वो उसको फील होगा? फील ही नहीं होगा।
बर्फ में ढकने के बाद जब वो निकलेंगे तब उसकी पालना होगी या कब होगी पालना? देवी सृष्टि की पालना
इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी शक्ति में कोई स्थान योग युक्त भी तो होगा कि सारे भी योगी बन जाते हैं? हाँ जो योग युक्त स्थान होता है वो दो प्रकार का, एक सुखधाम और एक शांतिधाम। शांतिधाम तो माउंट आबू में होगा और सुखधाम जमुना के कंठे पर कोई ऐसा स्थान होगा जहाँ सब बड़े जो संगठन होगा वो सुख चैन से रहेगा, चाहे कितना भी विनाश होता रहे।
बाबा बोला गया कि विनाश से पहले जिन्होंने अपना संकल्प का खून को जाम कर लेंगे तो उस बर्फ को आत्माएं बर्फ के अंदर
उनको असर नहीं होगा,
बर्फ के अंदर में नहीं दबेंगे,
बर्फ का असर ही नहीं होगा।
बर्फ में दबे जाएंगे
क्यों? दबेंगे उनके उनके ऊपर गाज क्यों गिरे? जब विनाश होता है तो खुदा के बंदे बड़े आराम से रहते हैं, उनके ऊपर प्रकृति की मार तामसी प्रकृति उनके लिए सात्विक बन जाती है।
वो तो बात समान आत्मा होंगे ना?
तो होंगे ना, एक लाख
बाबा जो बर्फ में घटने के बाद उनको तो ज्ञान नहीं होगा, कुछ भी भूल जाएंगे सारा बात को। तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि मुझे पालना मिल रही है?
पालना मिलने की जरूरत, ये पता करने की जरूरत क्या है? ये हिस्ट्री बनाने की जरूरत क्या है? अभी पतित दुनिया की बनाई जाती है, पतित मनुष्य बनाते हैं या पावन देवता बनाते हैं? पतितों की स्थिति होती है क्योंकि दुख फील होता है, उसका समय का वो ध्यान रखते हैं, इस समय ऐसा हुआ, इस समय ऐसा हुआ, दुख ज्यादा याद रहता है, याद थोड़ी रहता है।
जो सुख में चले गए उसके लिए पालना एक तरह से पुण्य भी माना जा सकता है?
पालना सारी प्रकृति करती है, मनुष्यों को कोई पालना नहीं करनी पड़ती।
तो जो विष्णु द्वारा देवी सृष्टि की पालना होती है ना,
वो यहाँ की बात है, संगम युग की,
तो वो तो अभी प्रैक्टिकल माना जा सकता
है।
जो
अभी प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है, सन 18 में जब पहला राधा कृष्ण का जन्म हो तब अनुभूति होना शुरू होगी अति इंद्रिय सुखी।
तो बर्फ में तब तक ढक चुके होंगे ना,
जब एटमिक विस्फोट इकट्ठे होंगे तब पृथ्वी पूरी डोलायमान होगी या उससे पहले डोलायमान हो जाएगी।
तो कृष्ण का जन्म कहाँ, पतित दुनिया में होगी?
कौन से कृष्ण का जन्म?
सतयुगी कृष्ण का।
सतयुगी कृष्ण का जन्म पतित दुनिया में क्यों होता है? उनका जन्म तो सतयुग में ही होगा।
2018 तक उनका ऐसा अंदाजा किया जा सकता है सतयुग?
वो तो आप अंदाजा लगा रहे हैं।
तो बाबा 2036 तक तो फिर उनको अपना बच्चा तो नहीं बैठेगा कुर्सी में? बच्चा तो नहीं ना बैठेगा राजकुमार का, जो वो जो मिलेगा विश्व महाराजन विश्व महारानी उसको जो गद्दी संभाल देंगे 2037।
गद्दी बद्दी वहाँ कुछ नहीं होती है। चित्र में देखो, चित्र में लक्ष्मी नारायण खड़े हुए दिखाए गए हैं, छत्रधारी दिखाए गए हैं, या राम सीता को त्रेता में छत्रधारी दिखाया है?
फिर भी बच्चे के रूप में तो नहीं होंगे बाबा।
कौन?
राधा कृष्ण जो सतयुगी होंगे 2036 में, बच्चे के रूप में तो नहीं होंगे ना, बड़े ना होंगे।
36 के बाद पैदा नहीं होंगे?
जो पहला जो कृष्ण है,
पहला पत्ता पैदा होगा कि नहीं सतयुग के आदि में?
36 के पहले तो होगा ना।
हाँ, जो होगा होगा, उनका स्थान सुरक्षित होगा।
पहले पहले बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ,
बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ 2018 में सत्ययुगी कृष्ण का जन्म होगा।
वो सत्ययुगी कृष्ण यहाँ संगम युग में ही सत्ययुग होता है, सत्व प्रधान स्टेज वाली आत्माएं होंगी, वो बेहद को हद में पकड़ लिया
है। तो क्या है, हम लोग का ऐसा कंसेप्शन था,
कंफ्यूजन था।
कंफ्यूजन था, 2018 में जन्म होगा, 18 वर्ष जब होगा 2036 में जाके सिंहासन।
ऐसे माताओं को ललक रहती है, छोटा बच्चा हो खिलाने को मिले देखने को मिले, तो ऐसे आत्माओं ने अपना कंफ्यूजन पैदा कर लिया।
तो वास्तव में 2018 में संगम की कृष्ण राधा कृष्ण प्रत्यक्ष हो,
संगम युग में शास्त्रों में जिस कृष्ण का गायन है वो कृष्ण का जन्म गाया हुआ है।
तो वो क्या 18 साल में
जो कृष्ण है बाबा,
उसका कोई गायन नहीं है शास्त्रों
में, वो गायन नहीं है। तो सतयुगी कृष्ण 2036 में पैदा होगा,
2036 के आस पास पैदा होगा। उसके हाँ उसी टाइम एक तरफ स्थापना के नजारे और दूसरी तरफ विनाश के नजारे, और दोनों सूक्ष्म में भी है और बेहद में भी, हद में भी।
अब बाबा जो मैंने संगम की जो लक्ष्मी नारायण पहला बच्चा पैदा करेगा, पहला नंबर की जो सतयुगी मैंने पहले जो सतयुगी राधा कृष्ण होगा वो होगा, और बाद में नंबर बार वो जो सड़चल लाख को जन्म देगा नंबर बार
होंगे, और धर्म के भी आते रहेंगे
2036 के बाद।
हाँ जी, 150 साल तक
जन्म लेते रहे।
विश्व महाराजन जो विश्व है वो संगम युग में होगा या विश्व सतयुग में होगा? संगम युग का विश्व महाराजन है, सतयुग में विश्व महाराजन नहीं होता।
सतयुग में तो 2018 में कृष्ण बच्चा हुआ था, महाराजन उसका बाप
है।
2018 में जो कृष्ण
हाँ विश्व महाराजन होगा तब तो बच्चा होगा।
आपने बोला है 2018 राधा कृष्ण का जन्म होगा,
राधा कृष्ण का जन्म होगा, यहाँ तो बेहद का बच्चा है और बेहद का बाप है। क्या न हद का बच्चा है और न हद का
बाप है। यहाँ वेद का बच्चा और बाप का जन्म इकट्ठा है या आगे पीछे?
इकट्ठा
है, इकट्ठा है। संक्षत्तर में अगर प्रवेशता भी हुई तो बच्चा और बाप की प्रत्यक्ष प्रवेशता संक्षत्तर में दोनों की हुई या एक की हुई, एक की नहीं हुई? तीसरा नेत्र शिव नेत्र भी प्रत्यक्ष हुआ और साथ साथ अर्ध चंद्रमा भी प्रत्यक्ष हुआ, तब कहा जाता है शंकर। नहीं तो शंकर नाम नहीं प्रत्यक्ष हो सकता।
पापा,
बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा गया हुआ है।
98 में
जो जन्म है वो ब्राह्मण का पहला जन्म ब्राह्मण नहीं माना जाता पक्का। यहाँ तो जो भी ब्राह्मण है पाठधारी वो ब्राह्मण है या शूद्र है? जनेऊधारी है या नहीं है? होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? तो पक्का पक्का जब तक तीन सूत्रों का धागा जीवन में प्रैक्टिकल जीवन में धारण नहीं किया है या पक्का पवित्र ब्राह्मण जब तक नहीं बना है तब तक द्विजन्म नहीं कहा जा सकता। दूसरा जन्म जब तक ब्राह्मण का पक्का नहीं हुआ तब तक उसका दूसरा जन्म माना ही नहीं जाएगा। पहला जन्म हुआ 98 में, 76 में तो कुछ हुआ ही नहीं। वो तो बुद्ध रूपी क्षेत्र में प्रवेशता है सिर्फ,
उसमें द्विजन्म
नहीं। जन्म कहाँ है? वो तो लक्ष्मी नारायण का जन्म बताया, राधा कृष्ण का जन्म तो नहीं बताया। और
दो सूत्र वाले ब्राह्मण हम लोग बने हैं।
दो सूत्र
विजय ब्राह्मण,
हाँ। ऐसा नहीं होता है, ब्राह्मण बनता है पक्का ब्राह्मण बनता है तो तीन सूत्र इकट्ठे धारण करता है कि एक सूत्र पहले धारण करता है फिर दूसरा सूत्र धारण करता है फिर तीन सूत्र धारण करता है।
जो ब्राह्मण होता है ना, ब्राह्मण का दोबारा जन्म बोलता है ना, द्विज
दोबारा जन्म होता है तो तीनों सूत्र इकट्ठे धारण करता है या एक एक करके धारण करता है?
तीनों सूत्र
इकट्ठे धारण करता है। तीन सूत्र ब्रह्मा का ज्ञान पक्का हो जाए, विष्णु का ज्ञान पक्का हो जाए और शंकर का ज्ञान भी पक्का हो जाए, तीनों सूत्रों का पक्का पक्का धारण हो जाए,
तीनों का पाठ को पहचान
लेना होगा। संगम की राधा कृष्ण का वो क्या सारा दुनिया में प्रत्यक्ष होगा?
ओहो, पहले ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्षता होती है या पहले बाहर की दुनिया में होती है?
तो 2018 में पहले ब्राह्मण की दुनिया में प्रत्यक्षता शुरू।
अरे ब्राह्मणों की बात है, ब्राह्मणों की बात को ब्राह्मण संप्रदाय वाले ही पहले पहचानेंगे या बाहर की दुनिया वाले पहले पहचानेंगे?
लेकिन 2008 के आसपास, 8-9 के आसपास जो भी विष्णु मूर्ति प्रत्यक्ष हो,
प्रत्यक्ष जब संक्षेत्र में मूर्ति हुई थी दूसरी तो सबने पहचान लिया या थोड़ों ने नंबर बार पहचाना था? ऐसे जब भी हो, जब 47-48 में दादा लेखराज ब्रह्मा को ब्रह्मा के रूप में पहचानने वाले थोड़े से थे या बहुत थे? थोड़े से थे, लेकिन प्रत्यक्षता तो कही जाएगी ना।
तो 2008-09 से 2018 तक ब्राह्मण परिवार में अच्छा रूप में प्रत्यक्ष होगा,
अच्छी तरीके से प्रत्यक्षता हो जाएगी तीनों मूर्तियों।
और 2018 का बाद दुनिया में,
दुनिया में धीरे धीरे फैलेगा। सिर्फ अखबारों में पढ़ने मात्र से लोगों की समझ में आ जाएगा क्या? ये ज्ञान आमने सामने बैठ करके समझाने का है या सिर्फ पढ़ने और सुनने से किसी की बुद्धि में बैठ जाता है? सिर्फ लिटरेचर देने से किसी की बुद्धि में बैठेगा नहीं, आमने सामने बैठ करके समझाना पड़े। ये ज्ञान किताबों में पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, पुस्तकों में बंधा हुआ नहीं है, इसमें एक एक बात का जवाब देना पड़े और पुस्तकें जवाब
नहीं
देती, अखबार भी जवाब नहीं दे सकते, टेलीविजन भी जवाब नहीं दे सकता, एक एक के अंदर अलग अलग प्रश्न पैदा होते, तो आमने सामने बैठ करके बात को समझना पड़े।
संगम की नारायण
राधा कृष्ण को वो सेकंड नारायण हो
जाएगी राधा कृष्ण
वो जब 36 में जब वो तो नारायण हो जाएगा ना
हाँ जी
तो सेकंड नारायण कहेंगे
लेकिन नारायण सतयुग का है या संगम युग का कौन से नारायण की क्या बात कर रहे हैं
ना, पहले नारायण तो है जो विश्वराजन महाराजन होंगे वो तो पहले नारायण
हाँ जी
सेकंड नारायण जो संगम जी की
सतयुग में जो पहला नारायण होगा वो राधा कृष्ण ही पहला नारायण बताया जाएगा
बाबा जो अभी जो हमारा अभी जो लक्ष्मी नारायण है संगम युग का वही मतलब 2018 को पहला बच्चा राधा कृष्ण का बांध रहा मतलब मन बुद्धि से तभी सुप्रीम सर परम धाम जा रहे इनको कंप्लीट बना कर
चलो तुम्हें दिखाई पड़े तो अच्छा है
संगम युग का जो राधा कृष्ण है यही तो है संगम युग का राधा कृष्ण यही है
यही है माने अरे आत्मा अलग है या एक ही आत्मा है
संगम के जो राधा कृष्ण एक ही आत्मा है वही
एक ही आत्मा है
राधा अलग
संगम युगी राधा कृष्ण और सतयुगी राधा कृष्ण
वो अलग संगम युग जो राधा कृष्ण वही लक्ष्मीनारायण मानते हैं अभी तो बाप टीचर गुरु का पाठ हमारा बजा रहे
है लेकिन कृष्ण के रूप में पाठ बजाने वाली जो आत्मा अभी पढ़ाई पढ़ रही है वो अलग है या एक ही
वो तो अलग है
तो जैसे यहाँ अलग है वैसे वहाँ भी अलग साबित हो जाएगी
लेकिन एक कृष्ण जो 2018 को जो बच्चा है कृष्ण 2018 को जो जन्म लेने वाले
हाँ।
जैसे थोड़ा पहले ना आप बोला कोई कोई माता ऐसे होता है जो बच्चा को खिलाएंगे बात दूसरा बात है
हाँ?
यह की बात है
हाँ?
कोई कोई माता सोचे जो हम बच्चा खिलाएंगे दूसरा बात हो गया
खिलाने पिलाने की बात ये तो देवान की बात होगी
लेकिन ये जो कृष्ण है ये जो संगम युग का कृष्ण है ये राम वाली आत्मा ही है ना
राम वाली आत्मा के थ्रू
जी
राम वाली व्यक्तित्व के थ्रू कृष्ण वाली आत्मा अलग से प्रत्यक्ष हो जाए लोगों को समझ में आए जैसे हमारी समझ में आता है कि ये कृष्ण की आत्मा के वचन है क्या जैसे मुरली में आता है लक्ष्मी नारायण तो बुद्धू है और फिर मुरली में आता है लक्ष्मी नारायण तो समझदार है तो समझदार किसने बोला और बुद्धू किसने बोला और किसके लिए बोला तो ये बात हमारी समझ में आती है
तो
ऐसे ही
तो ब्राह्मण को दुनिया में प्रत्यक्ष होगा हमारा पहले राधा कृष्ण संगम युग तो हम लोग को बुद्धि में ही अभी आता है हमारा बुद्धि में जो यही राधा कृष्ण है संगम युग
माने दैहिक रूप में ही समझ में आता है आत्मिक रूप में समझ में नहीं आता
मेरे आत्मिक प्रैक्टिस हुआ नहीं इसका
आपका हो जाएगी
क्योंकि 2018
जब विनाश शुरू होगा और धर्मराज की मार पड़ेगी तो सब खड़े हो जाएंगे रात में किसी को नींद आएगी ही नहीं अमृत मिले
अभी तो आराम से
भाई तो आराम से
आप
कैसे समझना चाहिए नहीं नहीं राम के भक्त अलग है आत्माएं और कृष्ण की भक्त आत्माएं अलग है जो राम के भक्त हैं वो राम को ही संगम की कृष्ण देखेंगे और जो कृष्ण के भक्त हैं जो अभी शरीर छोड़ते जा रहे हैं और शरीर छोड़ करके कोई न कोई में प्रवेश करते हैं तो वो कृष्ण को अलग रूप में देखेंगे बल व्यक्तित्व एक ही हो लेकिन आत्मा को अलग समझेंगे इसलिए जो कृष्ण के भक्त हैं उन्होंने द्वापर युग में जो शास्त्र बनाए हैं उसमें कृष्ण की महिमा ज्यादा कर दी क्या और जो राम के भक्त हैं उन्होंने राम की महिमा ज्यादा कर दी
नहीं बाबा ये संगम युग कृष्ण का ही है ना
भले एक है लेकिन आत्माएं तो दो अलग अलग है ना
वो तो एक है सज्जू का जो कृष्ण है दादा लेता
है हाँ जो वो आत्मा अलग है ना
2018 को हम लोग
2018 में कौन सा कृष्ण होगा जिसकी बुद्धि में ये बैठ जाएगा कि गीता का भगवान साकार में अलग है दादा लेखराज गीता का भगवान नहीं है
हाँ जी
किसकी बुद्धि में बैठे?
राम को बैठेंगे।
राम को अभी नहीं बैठा है,
मतलब राम का दल को बैठेंगे, राम को जो दल होता वही बैठेंगे।
राम के दल को अभी नहीं बैठा है बुद्धि में,
बैठा है लेकिन संगम युग का तो किस्मा ही है।
अरे आप दो अलग अलग है, पार्ट में जाने वाली
साकार एक आकार,
हाँ
एक आकारी कृष्ण है,
हाँ
एक साकारी,
हाँ
लेकिन हमारे जब साकार सूर्य है तो हम आकार को कैसे देखेंगे?
अरे तो तब तक संपन्नता होगी कि नहीं होगी? जब कृष्ण की संपन्नता होगी तो कृष्ण के फॉलोअर्स की संपन्नता होगी या नहीं होगी?
लेकिन अभी तो
कृष्ण के जो फॉलोअर्स है बेसिक नॉलेज,
लेकिन हम तो राम का बोलो फॉलोअर्स है,
तुम अपने राम की गाथा गाओ, वो अपने कृष्ण की गाथा गाओ, लेकिन है दोनों ही अंधे।
लेकिन किस्मत ही है,
चाहे संगम भी कृष्ण माने चाहे संगम युग में राम माने, लेकिन न राम उद्धार करने वाला है न कृष्ण उद्धार करने वाला। उद्धार करने वाला कौन है? शिव बाप।
लेकिन स्थूल आग में
राम कृष्ण के चक्कर में बुद्धू फंसेंगे,
स्थूल आग में तो हम सका
और लड़ाई लड़ेंगे। क्या आया है
संगम जी की, संगम जी की कृष्ण ही कहता है, संगम जी की कृष्ण ही कहता है,
क्या कहता है?
छीप नहीं कहता है, संगम जी की छीप तो नहीं, एक बार नहीं पता।
हाँ संगम जी कृष्ण जो है, संगम जी जो कृष्ण है उसको हम राम भी नहीं कहेंगे और उसको हम शिव भी नहीं कहेंगे, न वो शिव है न वो राम है।
बाबा है राम कृष्ण मिल करके हम लोग को जब
पिटाई देंगे धारणा का राजा तब समझ में आएगा क्या?
राम पिटाई को नहीं देता है,
मतलब वही बातें हो गया। अभी हम लोग बार बार इनको हम दूर नहीं है, तब तो ये जो काम कराने वाला तो सुनी सो है, वो तो करा लेंगे सारा पार्ट उनका ही। हम लोग को जो बोला था राम और कृष्ण का जो हम लोग बांधे जो ज्ञान का अंधे है वो ये पिटाई के बाद सुधरेगा क्या?
पिटाई के बाद समझ में आ जाएगी, अभी नहीं समझ में आता है।
शिव भी नहीं है,
एक बात सारी बात खत्म हो जाती है। नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण। तो ये चारों ही नाम एक व्यक्तित्व के है,
एक व्यक्तित्व के है, लेकिन रामायण आत्मा में प्रोड्यूस जो है ना
व्यक्तित्व तो एक ही है ना, तो वो व्यक्तित्व में जिनकी बुद्धि जाती है वो अपने को फेल समझे, हाँ, और जिनकी बुद्धि आत्मा को पकड़ती है तो वही बात
है। तो राम वाली आत्मा है नेक्स्ट टू गॉड,
राम वाली आत्मा और कृष्ण वाली आत्मा जो नेक्स्ट टू गॉड कहा है वो कोई उनको नहीं कहा है, आत्मा के रूप में नहीं कहा, प्रैक्टिकल पार्ट के रूप में कहा है। चाहे वो संगम युग कृष्ण हो, चाहे वो संगम युग में नारायण हो, चाहे वो शंकर का पार्ट हो संपन्न स्टेज में, और चाहे वो प्रजापिता हो, जो व्यक्तित्व है जो पर्सनालिटी है वो एक ही है नेक्स्ट टू गॉड।
जब आप 2018 में जाकर कृष्ण और इस सोल का बुद्धि में बैठेंगे जे गीता की भगवान मान शिव शंकर भोलेनाथ है, 2018 में जाके बैठेंगे?
बिल्कुल बैठेगा
2018 में जाके।
हाँ जी।
अच्छा आज जो उनका जो फॉलोअर्स है जो बेसिक से आकर प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं,
हाँ?
उन लोगों को की नंबर पर बाद में बैठेंगे ना, उसी टाइम के अंदर में ही हो जाएगा?
जब कृष्ण की आत्मा में ये पार्ट प्रत्यक्ष होगा तो उनके फॉलोअर्स भी उनके साथ ही साथ होंगे ना, नंबर वन
नंबर,
हाँ जो अव्वल नंबर कैटेगरी के होंगे वो पहले जानेंगे,
और जो जो धीरे धीरे समझेंगे 2018 का बाद समझेंगे,
बाद में समझते रहेंगे। समझने वालों की संख्या चाहे कृष्ण की कैटेगरी के बच्चे हों आत्माएं हों और चाहे राम की कैटेगरी के जन्म देने वाले बच्चे हों, दोनों मिलाकर के 2036 तक पूरी बात समझ जाएंगे।
गायना है,
हाँ तो वो गोपी गल्लभ की गोप गोपियाँ कौन से संत तक तैयार हो जाएंगी?
तो आप बोला 18
में नहीं, 18 में हो जाए तो राधा कृष्ण को भी पहचाने देखें, राधा कृष्ण को परिवार को परिवार में जन्म परिवार में वो जन्म लेगा उसमें सैकड़ों हजारों की तादाद वाले होंगे या थोड़े होंगे
थोड़े
थोड़े होंगे वो फिर बढ़ता जाएगा बढ़ते बढ़ते 2036 तक पूरा 16,000 का परिवार हो जाएगा।